जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। अनेक संतों एवं फकीरों की भिन्नतों मिन्नतों तथा फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी और जयपुर की राजकुमारी मरियम उजमानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया। अकबर सलीम को प्यार से सेखू बाबा पुकारता था। सलीम की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। उसके विभिन्न शिक्षकों में से सबसे महत्वपूर्ण अपने समय का प्रमुख विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना था। विभिन्न भाषाओं और शास्त्रों के ज्ञान के अतिरिक्त सलीम ने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की। यद्यपि तत्कालीन बादशाहों की परंपरा के अनुसार सलीम बादशाह जहांगीर ने अनेक विवाह किए, परंतु उसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हुआ। सलीम का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो इसी की संतान था। मानबाई को सलीम जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। इस कारण कालांतर में 1586 ईस्वी में उसका दूसरा महत्वपूर्ण विवाह राजा उदय सिंह की लड़की जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ, जिसकी संतान शाहजादा खुर्रम बादशाह शाहजहां था। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म उसकी बेगम साहिबे जमाल से और चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखैल से हुआ। सलीम को बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। इस कारण वह आरंभ से ही ऐशो आराम और शराब का शौकीन हो गया। उसके पिता के अंतिम दिनों में उसने उसकी अवज्ञा की और अपने को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयत्न किया। अंत में माँ बेटे बाप बेटे में समझौता हो गया। अकबर के दो अन्य पुत्रों दानियाल और मुराद की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अपनी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने सलीम को 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वह उसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर के नाम से बादशाह बना। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिसमें से एक अब्दुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपनी शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए, जैसे जागीरदार और सरकारी अधिकारी गांवों और सड़कों के निकट कुएं और सरायें बनवाए, व्यापारियों के सामान की बिना उनकी इच्छा के तलाशी न ली जाए, किसी के घर पर जबरदस्ती अधिकार न किया जाए, अपराध के दंड स्वरूप किसी के नाक कान न काटे जाए, किसानों की भूमि पर कोई भी जबरदस्ती अधिकार न करे, राज्य के खर्चे से बड़े नगरों में अस्पताल खोले जाएं और वहां चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए आदि। इस प्रकार जहांगीर ने अपने शासन का आरंभ उदारता और जनहित की भावना से किया। उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर एक सोने की जंजीर डलवा दी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। फर्स्ट, खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र राजा मान सिंह का भांजा और मिर्जा अजीज कोका का दामाद था। वह सुशिक्षित, उदार, सुंदर और चरित्रवान था। अकबर के अंतिम दिनों में राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका ने सलीम के दुर्बल चरित्र को दृष्टिगत रखते हुए खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु जब अन्य सरदार इसके लिए तैयार न हुए तब यह प्रयत्न छोड़ दिया गया। अजीज कोका ने जहांगीर से क्षमा मांग ली और उसे बादशाह स्वीकार कर लिया। राजा मान सिंह ने खुसरो को लेकर बंगाल भागने की तैयारी की, परंतु जहांगीर के आश्वासन पर वह वापस आ गया और खुसरो को जहांगीर को सौंप दिया। जहांगीर ने उन दोनों को क्षमा कर दिया, परंतु खुसरो को अर्धबंदी के रूप में रखा और कुछ समय पश्चात राजा मान सिंह को बंगाल का सूबेदारी से पृथक कर दिया। खुसरो 17 वर्ष की आयु का था। वह बादशाह बनने के सपने देखने लगा। वह 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को आगरा के किले से भाग निकला। दिल्ली होता हुआ वह लाहौर की तरफ गया। उस समय तक उसके समर्थकों की संख्या करीब 12,000 हो गई। उसने सिख गुरु अर्जुन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु लाहौर के किलेदार ने उसके लिए किले के फाटक न खोले। खुसरो के भागने की सूचना जहांगीर को कुछ घंटों में ही मिल गया। उसने एक सेना शहजादे की पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं भी लाहौर की तरफ चल दिया। खुसरो ने भैरावल के मैदान में जहांगीर का मुकाबला किया, परंतु उसकी पराजय हुई और वह भाग खड़ा हुआ। चिनाब नदी को पार करते हुए वह अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। इस अवसर पर खुसरो को सिर्फ कैद कर दिया गया। इस प्रकार 1 माह में खुसरो का विद्रोह समाप्त हो गया। 1607 ईस्वी में जब जहांगीर काबुल से लाहौर वापस आ रहा था, तभी मार्ग में उसकी हत्या का खडंत रचा गया। खुसरो के अतिरिक्त इसमें राज्य के कुछ अन्य सरदार भी शामिल थे, परंतु शाहजादा खुर्रम को इसकी सूचना मिल गई और वह जहांगीर को यह सूचना दे दी। जहांगीर ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी की और जब सभी षड्यंत्रकारी के बारे में उसे ठीक पता लग गया, तब उसने उनको कठोर दंड दिए और खुसरो को अंधा करा दिया। बाद में शहजादे पर दया करके उसकी आँखों का इलाज कराया गया, परंतु उसकी एक ही आँखों में थोड़ी रोशनी आ सकी। उसके पश्चात खुसरो प्रायः बंदी ही रहा। अंत में दक्षिण युद्ध के अवसर पर शहजादा खुर्रम ने बादशाह से उसे अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना की। बादशाह उससे इनकार न कर सका और खुर्रम ने, जिसे शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया जा चुका था, एक हत्यारे के द्वारा गला घोंटकर खुसरो को 1621 ईस्वी में मरवा दिया। खुसरो के विद्रोह ने कुछ अन्य छोटे छोटे विद्रोहों को भी जन्म दिया, जैसे बीकानेर के राजा जय सिंह का, बिहार के संग्राम का और बिहार में ही कुतुब का, जिसने स्वयं को खुसरो घोषित किया। ये सभी विद्रोह दबा दिए गए, परंतु खुसरो के विद्रोह का परिणाम मुगलों और सिखों के संबंधों का खराब होना भी था, क्योंकि जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव पर खुसरो की सहायता देने के जुर्म में 2,00,000 रुपया जुर्माना किया। जब गुरु अर्जुन देव ने उस जुर्माने को देने का इनकार किया, तब उन्हें मृत्युदंड दे दिया। इसे सिखों ने अपने धर्म पर अत्याचार माना। दूसरा, साम्राज्य विस्तार। अकबर ने जिस साम्राज्य विस्तार की परंपरा को स्थापित किया था, जहांगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न किया। उत्तर भारत की विजय छोटे छोटे कुछ राज्यों के अतिरिक्त प्राय पूर्ण थी। अकेला मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने उस समय तक मुगलों की सत्ता को मानने से इनकार किया था। दक्षिण भारत में राज्य विस्तार की भावना थी, जहां उस समय तक अहमदनगर के राज्य को भी समाप्त नहीं किया जा सका था। जहांगीर के समय में इन्हीं राज्यों को विजय करने के प्रयत्न किए गए। मेवाड़ से युद्ध और संधि। अकबर ने अपने समय में मेवाड़ को जीतने का निरंतर प्रयत्न किया था, परंतु महाराणा प्रताप के दृढ़ विरोध और निरंतर संघर्ष के कारण संपूर्ण मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार न हो सका था, बल्कि अपनी मृत्यु के पहले राणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के प्राय सभी भू क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अमर सिंह राणा बना। जहांगीर के शासनकाल में वही मेवाड़ का शासक था। गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा परवेज को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ विजय के लिए भेजा और वह राणा अमर सिंह ने आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर युद्ध का निर्णय किया और देवार, के दर्रे में एक युद्ध हुआ जिसमें कोई निर्णय न हो सका और युद्ध चलता रहा। खुसरो के विरुद्ध के विद्रोह के कारण शहजादा परवेज को आसफ खां सहित वापस बुला लिया गया। इस प्रकार 1606 ईस्वी में युद्ध प्राय समाप्त हो गया, परंतु 1608 ईस्वी में महावत खां को पुनः उसी उद्देश्य से भेजा गया। उसने राणा को जंगलों में शरण लेने के लिए बाध्य किया, वह इससे अधिक सफलता न पा सका। 1609 ईस्वी में उसके स्थान पर अब्दुल्ला खां को नियुक्त किया गया। अब्दुल्ला खां 1611 ईस्वी में रानपुर के दर्रे में प्राप्त हुआ। यद्यपि थोड़े समय के पश्चात उसने राजकुमार करण को एक युद्ध में प्राप्त करके अपने सम्मान को पुनः स्थापित कर लिया, परंतु वह अधिक सफलता न पा सका। उसके पश्चात राजा बसु और उसके असफल होने पर मिर्जा अजीज कोका को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। ईस्वी में स्वयं जहांगीर अजमेर गया और शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बाद में अजीज कोका को वापस बुला लिया गया और शाहजादा खुर्रम को इस कार्य के लिए संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। खुर्रम ने राणा पर प्रत्येक प्रकार से दबाव डाला, खेती बर्बाद कर दी, रसद के मार्ग को बंद कर दिए गए, स्थान स्थान पर राजा का पीछे किया गया, उसके सूचना प्राप्त करने के लिए चौकियां बना दी गई। राजपूत निरंतर साहसपूर्वक युद्ध करते रहे, परंतु परिस्थितियां प्राय वही हो गई जो राणा प्रताप के समय में हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात हो गई थी। अंत में राजकुमार करण अन्य राजपूत सरदारों ने राणा मुगलों से संधि करने की सलाह दी। राणा ने इसे स्वीकार कर लिया और अपना एक राजदूत शहजादा खुर्रम के पास भेजा। खुर्रम ने उसका स्वागत किया और उसे जहांगीर के पास भेजा। जहांगीर ने प्रसन्नता से राजा के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के निम्नलिखित शर्तों पर संधि हो गई। पहला, राणा ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरा, राणा से मुगल वंश से विवाह संबंधों के लिए नहीं कहा गया। राणा ने स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र करण को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। तीसरा, जहांगीर ने मेवाड़ का संपूर्ण भूप्रदेश और चित्तौड़ का किला उदारतापूर्वक राणा को दे दिया। शर्त सिर्फ यह थी कि चित्तौड़ के किलों को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मेवाड़ और मुगलों का दीर्घकालीन संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़ के राणाओं ने इस संधि का उस समय तक पालन किया जब तक कि औरंगजेब की नीतियों के कारण राणा राज सिंह को मुगलों का विरोध करने के लिए बाध्य न होना पड़ा। मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष स्थान राजस्थान की इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से मुकाबला करने में राजपूतों का मुख्य स्थान उनका दृढ़ निश्चय और अच्छा सम्मान की भावना मात्र ही थी। मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने राणा कुंभा और राणा संगा के गौरव की रक्षा राणा प्रताप और राणा अमर सिंह के समय में भी की। इसी में उनकी महानता और मेवाड़ का गौरव था। यह कहना भूल होगी कि राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के गौरव रक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया। मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार करके राणा प्रताप के नाम को कलंकित कर दिया। राणा अमर सिंह ने मुगलों से उसी प्रकार और उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए युद्ध किया था जैसे राणा प्रताप ने किया था। कई अवसरों पर उसने मुगल सेना को परास्त किया। युवराज करण सिंह और अपने सरदारों के कहने पर ही उसने मुगलों की संधि करना स्वीकार किया। संधि की शर्तें भी सम्मानित थी। वह स्वयं कभी भी मुगल दरबार में नहीं गया और न उसने मुगलों से विवाह संबंध किया, परंतु इससे भी उसे संतोष न हुआ। कुछ समय के पश्चात उसने अपना सिंहासन युवराज करण सिंह को सौंपकर एक एकांत स्थान नौ चौकी में जाकर उसने अपने जीवन के सेफ दिन व्यतीत किए। यह कहना भी अनुचित नहीं है कि मेवाड़ का मुगलों से संघर्ष मेवाड़ की प्रजा के लिए लाभदायक न था। निरंतर संघर्ष के कारण राज्य में शांति समृद्धि और सुख संभव न था। शक्तिशाली और समृद्धशाली मुगल साम्राज्य से युद्ध करते हुए मेवाड़ कब तक सफलता पा सकता था तथा सम्मान की रक्षा के अतिरिक्त और क्या प्राप्त कर सकता था। मुगलों के आधिपत्य मात्र को स्वीकार करने से राणा को मेवाड़ की संपूर्ण भूमि और चित्तौड़ का किला प्राप्त हो गया था तथा उसकी प्रजा को शांति मिल गई। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की दो मूर्तियां बनवाकर आगरा में राजमहल के उद्यान में रखवाई। मेवाड़ के प्रति जहांगीर का व्यवहार भी सराहनीय था। शहजादा खुर्रम ने राणा अमर सिंह और युवराज करण का सम्मान व स्वागत किया। जहांगीर ने संधि की शर्तें सम्मानित रहने दी। उसने राणा के सम्मान को कहीं भी चोट नहीं पहुंचाई और मेवाड़ के जीते हुए भूप्रदेश तथा चित्तौड़ उदारतापूर्वक राणा को वापस कर दिए गए। युवराज करण को मुगल दरबार में बादशाह के दाहिने ओर स्थान दिया गया। उसे 5,000 सवार और 5,000 जात का पद दिया गया तथा अनेक बहुमूल्य उपहार जहांगीर और नूरजहां की ओर से दिए गए। साधारणतया ऐसा सम्मान मुगल बादशाह की ओर से किसी को नहीं दिया जाता था। दक्षिण भारत में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। अकबर के समय में खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था, परंतु अहमदनगर राज्य समाप्त नहीं हुआ था तथा बीजापुर और गोलकुंडा पूर्णतया स्वतंत्र थे। जहांगीर के समय में उनको जीतने या आधिपत्य में लेने का कार्य पुनः आरंभ किया गया। उस समय मुगलों की दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर ने प्रस्तुत की। मलिक अंबर अपने समय के योग्यतम व्यक्तियों में से था। अबिसिनियन मलिक अंबर को कासिम ख्वाजा नामक एक व्यक्ति ने बगदाद के बाजार से खरीदा था। उसने उसे अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह प्रथम की योग्य मंत्री मीरक दबीर चंगेज खा को बेचा। जब बरार और खानदेश मुगलों के अधिकार में चले गए तब मलिक अंबर ने बीजापुर राज्य की जाकर नौकरी कर ली, परंतु वह पुनः अहमदनगर वापस आ गया और उसने आंगन खा की सेवा में 150 घुड़सवारों के मनसबदार का पद स्वीकार कर लिया। जब अकबर के समय में शहजादा दनियाल ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया तब मलिक अंबर और मलिक राजू के मुगलों पर आक्रमण करने तथा उन्हें तंग करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उसने इस कार्य की पूर्ति सफलतापूर्वक प्राप्त की। उसने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और अहमदनगर राज्य के उन क्षेत्रों को जो मुगल आधिपत्य में चले गए थे मुगलों से छीनने में भाग लिया। 1601 ईस्वी से 1602 ईस्वी में मलिक अंबर ने मंडेर में सबसे पहली बार मुगलों का प्रत्यक्ष रूप से कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हुआ परंतु जीवित बच गया। अपने साथी सरदार मलिक राजू से मलिक अंबर की नहीं पट रह सकी, क्योंकि दोनों ही अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव चाहते थे। मलिक राजू की प्रतिद्वंदिता के कारण मलिक अंबर ने दो बार अहमदनगर राज्य का साथ छोड़ा और मुगलों की सेवा स्वीकार की, परंतु मुगलों की अधीनता में मलिक अंबर का भविष्य न था। 1607 ईस्वी में निजाम शाह ने राजू को कैद कर लिया और मलिक अंबर को साथ देने की मांग की। राजू के हटते ही मलिक अंबर का मार्ग साफ हो गया और वह निजाम शाह की सेवा में चला गया। जहांगीर के बादशाह बनने और खुसरो के विद्रोह के समय कुछ वर्ष दक्षिण भारत में शांति रही। मलिक अंबर ने उस समय का उपयोग विभिन्न सुधारों तथा अहमदनगर राज्य की शक्ति को दृढ़ करने के लिए किया। उसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के सुधार किए। उसने टोडरमल की लगान व्यवस्था से सबक लिया। लगान व्यवस्था को लागू करने में उसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, वह किसानों की भलाई चाहता था। दूसरा, वह कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था। तीसरा, वह राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और रैयतवारी व्यवस्था को आरंभ किया, जिसमें राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और स्वयं ही उनसे लगान वसूल करना आरंभ किया। उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को कई भागों में बांटा। उसने भूमि की पैमाइश की व्यवस्था की और पैदावार का 2/3 अथवा 1/3 भाग लगान के रूप में किसानों से लिया। बाद में उसने किसानों से सिक्के की शक्ल में लगान लेना आरंभ कर दिया। उसने किसानों और गांवों की सुरक्षा का प्रबंध किया। इन सुधारों से अहमदनगर राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मलिक अंबर ने यह जान लिया था कि मुगल साम्राज्य की विशाल शक्ति से अहमदनगर राज्य उस युद्ध से नीति से लड़कर लाभ नहीं उठा सकता जिसका प्रयोग उस समय तक होता रहा था। सामने के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला करना असंभव था। इस कारण उसने मुगलों से युद्ध करने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, जिसे मेवाड़ और बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं और अफगानिस्तान की कबाली जातियों ने सफलता से मुगलों के विरुद्ध अपनाया था। इसके लिए उसने स्थानीय निवासी मराठों की सेना में भर्ती किया। मराठे अपने निवास स्थानों के भूप्रदेशों से पूर्णतया परिचित थे और दक्षिण के पठारी भूप्रदेशों में गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए बहुत अनुकूल थी। मलिक अंबर ने शत्रु पर अचानक आक्रमण करना, उनकी रफत को रोकना, उस पर असावधान स्थिति में आक्रमण करना, समय पाकर भाग जाना, रात्रि को उसके खेमे पर आक्रमण करना, उसे लालच देकर अपनी सुविधा के अनुकूल स्थानों पर ले जाकर उससे लड़ना आदि विभिन्न गुरिल्ला युद्ध नीति के तरीके अपनी सेना को सिखाए। मराठा सैनिक इस युद्ध नीति में बहुत सकुशल हो गए, क्योंकि वह अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित थे। छिपने और आक्रमण करने के स्थान सरलता से प्राप्त कर लेते थे और आमने सामने का युद्ध करके सम्मान प्राप्त करना उनका लक्ष्य न था। राजधानी की सुरक्षा के लिए मलिक अंबर ने कई बार राजधानी को बदला। उसने पहले परेंद्र के स्थान पर जुनार को राजधानी बनाया, उसके पश्चात उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया और अंत में खिड़की को राजधानी बनाया, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित स्थान था। मलिक अंबर ने पर्सिया से व्यापारिक संबंध स्थापित किए और राजगढ़ से करीब 20 मील दूर जंजीरा की द्वीप में उसने अपनी नौसेना को स्थापित किया। उसने अपनी नौसेना को अबिसिनिया के अरब सीदियो सैयद की सहायता से दृढ़ किया और उन्हीं को नौसेना में भर्ती किया। वे सीदी थे जिन्होंने बाद में मराठा और यूरोपियन जातियों का समुद्र में मुकाबला किया। इस प्रकार मलिक अंबर ने आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सेना और नौसेना आदि सभी प्रकार के अहमदनगर राज्य को दृढ़ करके मुगलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। यह कहना उचित है कि युद्ध सेनापतित्व उचित निर्णय और शासन कुशलता में न कोई उसकी प्रतिद्वंदी था और न कोई उसकी बराबरी कर सका। अहमदनगर राज्य की स्थिति को विभिन्न प्रकार से दृढ़ करके मलिक अंबर ने मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयत्न किया और वह इसमें सफल हुआ। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान खाना को 10 लाख रुपए और 12,000 घुड़सवार अतिरिक्त रूप से दिए तथा दक्षिण भेजा, परंतु उसे कोई सफलता न मिल सकी। इस कारण 1610 ईस्वी में शाहजादा परवेज और आसफ खां को एक बड़ी सेना के साथ भेजा गया, परंतु इससे पहले कि वह सेना दक्षिण में पहुंच पाती, मलिक अंबर ने खानखाना को संधि करने तथा बुरहानपुर वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया। अहमदनगर के किले पर अधिकार 1610 ईस्वी में कर लिया गया। खानखाना को दक्षिण से बुला लिया गया और खाने जहान को दक्षिण भेजा गया। 1611 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर को जीतने का पुनः प्रयास किया। खाने जहान और राजा मान सिंह ने बरार और खानदेश की ओर बढ़ना आरंभ किया तथा अब्दुल्ला खान ने नासिक की ओर बढ़ना आरंभ किया। दोनों सेनाओं को दौलताबाद में मिलना था, परंतु अब्दुल्ला खान युद्ध की सफलता का संपूर्ण श्रेय स्वयं लेने के उत्साह में अकेला दौलताबाद तक बढ़ गया और मुख्य सेना की प्रतीक्षा नहीं की। उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अहमदनगर की सेना ने उस पर आक्रमण करके उसे गुजरात की ओर वापस लौटाने के लिए बाध्य किया। जहांगीर ने खाने जहान को वापस बुला लिया और खानखाना को पुनः दक्षिण भेजा गया 1612 ईस्वी। इसके पश्चात मुगलों का ध्यान मेवाड़ की ओर लगा रहा। दक्षिण में खानखाना ने कूटनीति से मलिक अंबर की कुछ वफादार सरदारों को अपनी ओर मिलाने में अवश्य सफलता प्राप्त की, परंतु कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ। 1615 ईस्वी में मुगलों ने रोशन गांव के निकट एक युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की एक संयुक्त सेना को परास्त करने में पहले बड़ी सफलता पाई। मलिक अंबर को भागकर दौलताबाद के किले में शरण लेनी पड़ी, परंतु शहजादा परवेज और खानखाना के पारस्परिक मतभेदों के कारण इस विजय से कोई विशेष लाभ नहीं उठाएगा। थोड़े समय के पश्चात मलिक अंबर ने फिर मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। जब 1615 ईस्वी में मेवाड़ से संधि हो गई, तब जहांगीर ने 1616 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को शाह की उपाधि देकर एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण भारत भेजा। स्वयं जहांगीर भी दक्षिण की देखभाल करने के लिए मांडू गया। 1617 ईस्वी में खुर्रम बुरहानपुर तक पहुंच गया। खुर्रम का दक्षिण में जाना और स्वयं जहांगीर का मांडू पहुंचना प्रभावपूर्ण था। बाकी कार्य की पूर्ति खानखाना की कूटनीति और मुगलों को धन ने कर दी। बीजापुर के राजा ने मध्यस्थता की। मलिक अंबर संधि के लिए तैयार हो गया। बालाघाट का भूक्षेत्र, अहमदनगर का किला तथा कुछ अन्य किले मुगलों को दे दिए और 1617 ईस्वी में अहमदनगर राज्य और मुगलों में संधि हो गई। बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उसे फरजंद पुत्र की उपाधि दी। खानखाना को दक्षिण का सूबेदार रखा गया और शाहजहादा खुर्रम वापस आ गया। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई, परंतु शाहजहां की दक्षिण की विजय केवल नाम की थी। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है, मुगल शक्ति दक्षिण में वही पर थी जहां अकबर ने दक्षिण लौटते समय छोड़ी थी। मलिक अंबर ने इस संधि का पालन बहुत समय तक नहीं किया। उसने गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों में समझौता कर लिया और 1620 ईस्वी में अहमदनगर के किले को घेर लिया। उसने बरार और आसपास के प्रदेशों को जीत लिया। एक बार फिर शाहजहां को एक बड़ी सेना और धन दक्षिण देकर भेजा गया। शाहजहां ने बुरहानपुर पहुंचकर आक्रमण की तैयारी की। अहमदनगर की नवीन राजधानी खिड़की पर अधिकार कर लिया गया। तत्पश्चात मुगलों ने अहमदनगर के किलेदार की सहायता के लिए एक सेना भेजी और दौलताबाद पर भी दबाव डाला। मुगलों की सफलता से मलिक अंबर भयभीत हो गया और संधि को तैयार हो गया। 1621 ईस्वी में हुई संधि के अनुसार अहमदनगर राज्य ने मुगलों से जीते हुए संपूर्ण प्रदेश वापस कर दिए। इसके अतिरिक्त उसने प्राय 14 लाख रुपए की वार्षिक आय का भूक्षेत्र और 18 लाख रुपए की नगद मुगलों को दिए। बीजापुर और गोलकुंडा ने अहमदनगर राज्य की सहायता की थी, एतएव बीजापुर ने 12 लाख और गोलकुंडा ने 20 लाख रुपए हर्जाने के रूप में मुगलों को दिए। इस प्रकार 1621 ईस्वी में दक्षिण का युद्ध समाप्त हो गया। इसके पश्चात शाहजहां और महावत खां के विद्रोह के कारण मुगलों को दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ। जहांगीर के समय में प्राप्त न हो सका। वास्तव में सीमा विस्तार की दृष्टि से जहांगीर के समय में दक्षिण के मुगलों की कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण में मुगलों का कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिण के राज्यों पर मुगलों का दबाव बढ़ गया। शाहजहां की विद्रोह के अवसर पर मलिक अंबर ने एक बार शाहजहां को सहायता दी और मुगल बादशाह का विरोध किया। स्पष्ट था कि अहमदनगर राज्य अभी मुगल सत्ता को स्वीकार करने को तैयार ना था। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, परंतु दक्षिण में मुगलों की स्थिति प्राय पहले जैसी ही रही। उस समय तक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा मुगलों के आधिपत्य में न था। ऐसी ही स्थिति में 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे साहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना। तीसरा, कांगड़ा। उत्तर पूर्व पंजाब में कांगड़ा की शुद्ध सुंदर घाटी है। कांगड़ा का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ दृढ़ किला था। अकबर के समय में पंजाब के सूबेदार हसन कुली खां ने इसे जीतने का प्रयास किया, परंतु वह असफल हुआ था। 1620 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत ने इस किले को घेरा डाला। और लगभग 4 माह के घेरे के पश्चात इस पर अधिकार कर लिया। चौथा अन्य विजय। 1611 ईस्वी में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खरदा कोष्टक में उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से जीता और राजा ने अपनी पुत्री जहांगीर को भेंट की। 1615 ईस्वी में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां ने खोखर कोष्टक में बिहार के राजा दुर्जन साल से जीता, जहां हीरे की खाने थी जो राज्य की संपत्ति बना ली गई। 1617 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास के विद्रोह करने पर उसे पराजित किया गया और उसके राज्य को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1620 ईस्वी में कश्मीर के दक्षिण में एक छोटे से राज्य किश्तवाड़ को मुगलों ने विजय किया। 1622 ईस्वी में राजा ने विद्रोह किया और उसके राज्य को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रदेश में फलों और केसर की अच्छी खेती होती थी। 1613 ईस्वी में उत्तर पूर्व में मुगलों ने कामरूप पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार जहांगीर के समय में राज्य विस्तार के जो प्रयत्न किए गए वह आंशिक रूप से सफल रहे। जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मेवाड़ से संधि थी। दक्षिण के राज्य विस्तार मुख्यतया मलिक अंबर के विरोध के कारण सफल न हो सका। जहांगीर की समय की अन्य विजयें साधारण थीं। तीसरा, जहांगीर और यूरोपीय निवासी। इस समय में भी यूरोपीय निवासियों में से मुगल दरबार से संबंध रखने वालों में पुर्तगाली ही प्रमुख रहे। जहांगीर के समय में अधिकांशतया पुर्तगालियों ने मुगलों के संबंध अच्छे ही रहे। जहांगीर ने उन्हें अपने धर्म मानने, गिरजे बनवाने और व्यक्तियों को इच्छानुसार ईसाई बनाने की आज्ञा दे रखी थी और कई बार ईसाई पादरियों के मिशन जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। जहांगीर ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी, परंतु 1610 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कुछ शाही जहाज़ों को पकड़ा। अपनी नौसेना की श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए पुर्तगाली उदंड हो गए थे। यह घटना उसी उदंडता का परिणाम थी। जहांगीर ने अप्रसन्न होकर आगरा और लाहौर की गिरजे बंद करा दिए, बहुत से पुर्तगालियों को जेल में डाल दिया और उनकी व्यापारिक सुविधाएं समाप्त कर दी। पुर्तगालियों को अंत में बादशाह से माफी मांगकर समझौता करना पड़ा। जहांगीर के काल में पुर्तगालियों ने अन्य कोई दुर्घटना नहीं की। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भी बादशाह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया और विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह से मिले। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। मुगल दरबार में पुर्तगालियों के प्रभावशाली होने के कारण उन्हें अधिक सुविधाएं नहीं मिल सकी। तभी भी सर टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त की। चौथा, कंधार। जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया के हाथ में चला गया। 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह के अवसर पर पर्सिया के बादशाह शाह अब्बास ने खुरासान और निकट के अन्य अमीरों को कंधार पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन दिया। उन्होंने किले को घेर लिया, परंतु मुगल किलेदार साहेब खान ने उनका डटकर मुकाबला किया। 1607 ईस्वी में के आरंभ में मुगल सेना भी किले की सहायता के लिए पहुंच गई और ईरानियों को किले का घेरा उठाना पड़ा। शाह अब्बास ने इस आक्रमण के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया। उसने अपने सरदारों की नादानी बताया और जहांगीर से मित्रता का दावा किया। उसके पश्चात शाह अब्बास ने निरंतर 1611 ईस्वी से 1615, 1616 और 1620 ईस्वी में मुगल दरबार में मूल्यवान उपहारों सहित अपने राजदूत भेजे तथा जहांगीर से मित्रता और प्रेम का दावा किया, परंतु 1621 ईस्वी में पर्सिया ने पुनः कंधार का घेरा डाला और 1622 ईस्वी में उसे जीत लिया। शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर कंधार की रक्षा और उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न न कर सका। 5, नूरजहां तथा तत्कालीन राजनीति और इतिहास पर उसका प्रभाव। पहला, प्रारंभिक जीवन। जहांगीर के जीवन और उसके इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना नूरजहां से उसका विवाह था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसके पिता गियास बेग पर्सिया का रहने वाला था। अपने पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के पश्चात मिर्जा गियास बेग पर्सिया के अलावा अन्यत्र अपने भाग्य की आजमाने की नियत से अपने दो पुत्रों एवं एक पुत्री के साथ भारत के लिए रवाना हुआ। मार्ग में उसके अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी, परंतु काफिले के मालिक मलिक मसूद ने उसकी बहुत सहायता की। कंधार के निकट उसकी पत्नी ने एक और लड़की को जन्म दिया और यही लड़की मेहरुन्निसा थी। मिर्जा गियास बेग को अकबर की सेवा में जगह मिल गई और वह अपनी योग्यता से प्रगति करता गया। उसे काबुल के दीवान का पद दिया गया, परंतु बाद में वह अकबर की व्यक्तिगत कारखाने की सेवा में ले लिया गया। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक काल में ही उसे एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा की शादी अली कुली बेग के साथ कर दी गई। 1599 ईस्वी में मेवाड़ के आक्रमण के अवसर पर एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में अली कुली खां को शाहजादा फलीम ने शेर अफगन की उपाधि से विभूषित किया। परंतु जब सलीम ने विद्रोह किया तथा तब शेर अफगन उसका साथ छोड़कर बादशाह अकबर के पास चला गया। जब जहांगीर बादशाह बना तब उसने शेर अफगन को क्षमा कर दिया, परंतु उसे बंगाल में बर्दवान की जागीर सौंपी। शेर अफगन अपनी नवीन जागीर से संतुष्ट न हुआ और संभवतया उसने वहाँ पर हो रहे अफगानों के विद्रोह को दबाने में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। 1606 ईस्वी में राजा मान सिंह को हटाकर कुतुबुद्दीन को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उसी समय शेर अफगन पर राजद्रोह का अपराध लगाया गया और उसे कुतुबुद्दीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। शेर अफगन केवल दो व्यक्तियों को लेकर उससे मिलने गया। कुतुबुद्दीन ने उससे अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर शेर अफगन ने उस पर कटार से घातक प्रहार किया। उसने उसके मुख्य अंगरक्षक अम्बखा को भी मार डाला, परंतु कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को कैद कर लिया गया। जहांगीर के आदेश से मेहरुन्निसा को दरबार में लाया गया। उसे अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवका नियुक्त कर दिया गया। 1611 ईस्वी में नवरोज के त्यौहार पर जहांगीर ने उसे देखा और उस पर आसक्त हो गया। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। बाद में जहांगीर ने उसे क्रमशः नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की। 1683 ईस्वी में नूर जहां को पट्टमहिसी या बादशाह बेगम बनाया गया। विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। जहांगीर और नूरजहां के संबंधों पर विचार। नूरजहां और जहांगीर के विवाह को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को 1611 ईस्वी में देखा था। उसका उससे बचपन का प्रेम न था और शेर अफगन के कत्ल में जहांगीर का कोई हाथ न था। कुछ अन्य इतिहासकार यह कहते हैं कि जब जहांगीर युवराज था तभी मेहरुन्निसा ने उसे प्यार था। अपने पिता के समय में वह अपनी इच्छा की पूर्ति न कर सका और मेहरुन्निसा की विधवा होने पर उससे विवाह कर लिया। वही इतिहासकार यह भी कहते हैं क्योंकि जहांगीर मेहरुन्निसा को कभी भूल न सका था, इस कारण शेर अफगन को कत्ल कराकर अपनी इच्छा की पूर्ति की हो, यह संभव है। डॉक्टर बेनी प्रसाद उन इतिहासकारों में प्रमुख हैं जो नूरजहां के पहले संबंधों को स्वीकार नहीं करते तथा अपने विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। तत्कालीन ग्रंथों में इस प्रकार का कोई विवरण नहीं मिलता। शाहजादा के समय में ग्रंथों में ऐसा कोई विवरण नहीं मिला। तत्कालीन यूरोपीय लेखकों ने ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं किया, यद्यपि शाही परिवार के बारे में उन्होंने अनेक कुदंतियाँ का वर्णन किया। उस समय बहुविवाह की प्रथा थी। ऐसी स्थिति में अकबर सलीम को मेहरुन्निसा से विवाह करने से क्यों रोकता? यदि सलीम का मेहरुन्निसा से प्रेम होता तो अकबर शेर अफगन को सलीम की सेवा में नियुक्त न करता और सलीम बादशाह बनने के पश्चात शेर अफगन की पद वृद्धि न करता। राजा मान सिंह सलीम के स्थान पर खुसरो को गद्दी पर बैठाना चाहता था। इस कारण उसे बंगाल जैसे धनवान दूरस्थ प्रांत की सेवादारी हटाकर जहांगीर ने अपने विश्वासपात्र सरदार कुतुबुद्दीन को बंगाल का सूबेदार बनाया। उसका इस स्थान परिवर्तन में कोई अन्य आशय न था। नूरजहां जैसे श्रेष्ठ चरित्र की स्थिति अपनी पति के हत्यारे को क्षमा नहीं कर सकती थी, जबकि स्पष्ट है कि नूरजहां जहांगीर से प्रेम करती थी। मेहरुन्निसा को राजदरबार में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसके भाई और पति वहीं थे। इस प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद जहांगीर और नूरजहां में पहले से प्रेम घटना का खंडन करते हुए जहांगीर को शेर अफगन के कत्ल में उत्तरदायित्व मुक्त करते हैं। वह लिखते हैं, तत्कालीन प्रमाणों का गंभीर अध्ययन और स्वीकृति तथा स्वयं इस प्रेम कथा को निराधार सिद्ध कर देते हैं तथा जहांगीर और नूरजहां का चरित्र अधिक सत्य व अच्छे स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर आरपी त्रिपाठी भी जहांगीर तथा नूरजहां के पहले के प्रेम संबंधों को स्वीकार नहीं करते। वह लिखते हैं, जहांगीर ने असंतुष्ट होकर शेर अफगन को बर्दवान की दूरस्थ जागीर दी थी। शेर अफगन इस नियुक्ति से असंतुष्ट था और राजा मान सिंह की भांति उसने भी वहां के अफगान विद्रोहियों को दबाने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगान को प्रांतीय राजधानी राजमहल बुलाया था, जिसकी उसने परवाह नहीं की। इस कारण कुतुबुद्दीन स्वयं बर्दवान गया और उसे अपने पास बुलाया, जहां उसका कत्ल हो गया। जिस कारण शेर अफगान का कत्ल हुआ, उस अवसर पर एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता, उसका पुत्र और जहांगीर काबुल में थे तथा जहांगीर ने एतमादुद्दौला से असंतुष्ट होकर उसे उसके पद से हटा दिया था। इसी कारण मेहरुन्निसा को दरबार में रोका गया था और उसे सलीम बेगम की सेवका नियुक्त किया गया था। डॉक्टर एस आर शर्मा भी इसी पक्ष का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने लिखा, डॉक्टर प्रसाद ने अपनी बड़ी योग्यता के साथ छानबीन करके जहांगीर को इस अपराध से मुक्त कर दिया है और यह छानबीन ग्राह्या प्रतीत होती है। जबकि इस विचार के विपक्षी इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मत के बारे में वह लिखते हैं, इस विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की आलोचना दुर्बल है, वह अधिक संतोषप्रद नहीं है। परंतु इस मत के विपक्ष में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, जहांगीर के पक्ष में दिए गए डॉक्टर बेनी प्रसाद के तर्क नकारात्मक हैं। दूसरा, तत्कालीन इतिहासकार बादशाह के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र न थे। आधुनिक इतिहासकार उसकी तुलना में अधिक अस्पष्ट लिखने की स्थिति में है। तीसरा, केवल संदेह मात्र के आधार पर शेर अफगन को दंडित करने के आदेश कुतुबुद्दीन को दिए गए थे। कुतुबुद्दीन को बादशाह के असंतोष के कारण भी नहीं बताए गए थे। चौथा, जहांगीर ने जिसने अपने जीवन को न्यूनतम घटनाओं का वर्णन किया था, नूरजहां के बारे में 3 वर्ष बाद लिखा, उसने अपने इस विवाह की परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया है। पांचवा, जहांगीर द्वारा शेर अफगन के कत्ल की घटना के विवरण में शेर अफगन का कोई जिक्र नहीं किया गया। मेहरुन्निसा को उसकी पिता और भाई के पास न भेजकर दरबार में रखना और सलीमा बेगम की सेवका नियुक्त करना संदेहजनक है। सातवां, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 4 वर्ष बाद इस कारण विवाह किया, जिससे एक तो मेहरुन्निसा को अपनी भावना को शांत करने का अवसर मिल जाता और दूसरी अन्य व्यक्तियों का संदेह का कोई कारण न हो। इस प्रकार तर्क देते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, तत्कालीन तथ्यों का ठीक प्रकार अध्ययन करने से मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ता है कि शेर अफगन के मृत्यु की परिस्थितियां बहुत ही संदेहजनक हैं। यद्यपि इस बात को सिद्ध करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बादशाह इस अपराध के लिए दोषी था, एक तत्कालीन डच लेखक डी लायट ने जहांगीर के शहजादा काल में मेहरुन्निसा के प्रति उसके प्रेम का वर्णन किया है। उसे उसने लिखा था, क्योंकि उसकी मंगनी शेर अफगन से हो गई थी, इस कारण उसके पिता ने उसे विवाह करने की आज्ञा नहीं दी थी, परंतु वह उसके प्रति अपने प्रेम को कभी भूल न सका था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव का झुकाव भी जहांगीर और नूरजहां के पहले प्रेम संबंधों की ओर है। वह लिखते हैं, इस कथानक में 2 विचारणीय विषय हैं, एक जहांगीर का अपने शाहजादा काल में मेहरुनिसा से विवाह की इच्छा और दूसरा शेर अफगन की मृत्यु में उसका उत्तरदायित्व। पहले के विषय में डॉक्टर बेनी प्रसाद की धारणा का कोई अस्पष्ट आधार नहीं है। अकबर ने जैन खा कोका की पुत्री से सलीम के विवाह के लिए एक बार इनकार कर दिया था। शेर अफगन ने मेहरुनिसा की मंगनी हो जाना तो उसके मना करने का कारण हो ही सकता है। वह लिखते हैं, डीलायट की कथन के पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है और उसका विवरण उत्तरकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों की पुष्टि करता है। जहांगीर के चरित्र को देखते हुए यह असंभव बात नहीं लगती। दूसरे के विषय में वह लिखते हैं, यद्यपि शेर अफगन की मृत्यु के लिए जहांगीर को दोषी ठहराने के लिए कोई स्पष्ट एवं अकाट्य प्रमाण नहीं मिलते और राजा मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी से हटने का कारण यह नहीं माना जा सकता, परंतु यह भी स्पष्ट है कि शेर अफगन पर कोई निश्चित आरोप न था। उसका आकस्मिक अंत उसके अंत करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला साधन जहांगीर की मृत्यु, शेर अफगन के प्रति प्रकट की गई घृणा और उसका नूरजहां के विषय में उल्लेख न करना आदि सभी संदेहजनक हैं। वह लिखते हैं कि मेहरुनिसा को सलीमा बेगम की सेविका नियुक्त करने का कारण मेहरुनिसा को उस विवाह के लिए तैयार करना था और चार वर्ष बाद विवाह करना और उसका उल्लेख तीन वर्ष बाद करना संदेह निवारण के लिए थे। नूरजहां का चरित्र। जिस समय जहांगीर ने नूरजहां का विवाह हुआ था उस समय जहांगीर की आयु प्राय 42 और नूरजहां की आयु 34 वर्ष की थी। नूरजहां इस आयु में भी बहुत सुंदर दिखती थी। वह शिक्षित और तीक्ष्ण बुद्धि की थी। कविता, संगीत और चित्रकला का उसे शौक था। फारसी में उसने कविताएं लिखी थी। एक पुस्तकालय बनवाया था जिसमें अनेक अमूल्य पुस्तकों का संग्रह किया था। वस्त्र, श्रृंगार और आभूषणों का उसे शौक था और उनमें उसने नए नए ढंग और तरीके निकाले थे। जहांगीर से अपने विवाह के अवसर पर उसने एक अत्यंत सुंदर पोशाक का निर्माण कराया था जिसे नूरमहली के नाम से पुकारा गया और जो वर्षों तक हरम की स्त्रियों में लोकप्रिय रही। शासन में उसे रुचि थी और उसमें समस्याओं का हल निकालने की कुशलता थी। वह धैर्यवान और साहसी थी। वह धार्मिक, सदाचारी और चरित्रवान थी। जहांगीर के प्रति उसे प्रेम था। उसी कारण जहांगीर ने अपनी शराब पीने की मात्रा कम कर दी थी। उसका एक विशेष गुण करुणा उदारता था। वह विद्वानों और निर्धनों की सहायता करती थी तथा उसने सैकड़ों निर्धन लड़कियों के विवाह कराए थे। परंतु नूरजहां के चरित्र की एक विशेषता उसकी महत्वाकांक्षा थी। उसने शासन में हस्तक्षेप किया, अपने प्रभाव को बढ़ाया और सत्ता को अपने हाथ में रखने का प्रयत्न किया। कहा गया है कि संपूर्ण मुगल इतिहास में मुगल बेगमों का शासन में प्रभाव रहा। यह बात नूरजहां से अधिक किसी अन्य पर इतनी सत्यता पर लागू नहीं होती। चौथा, नूरजहां का राजनीति और इतिहास पर प्रभाव। विवाह के समय से ही नूरजहां का प्रभाव बढ़ने लगा। वह जहांगीर की प्रमुख बेगम बन गई और उसके पिता, भाई और अन्य संबंधियों के पदों में वृद्धि हुई। यह कहना तो अनुचित होगा कि उसके पिता एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को राज्य में श्रेष्ठ पद प्रदान किए जाने के कारण वही थी, क्योंकि वे स्वयं भी योग्य और वफादार सिद्ध हुए थे। परंतु इनमें संदेह नहीं कि नूरजहां उनकी उन्नति के लिए उत्तरदायी थी। शासन में उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। किसी भी स्त्री को भूमि उस समय तक दान नहीं की जाती थी जब तक नूरजहां की स्वीकृति न ली जाए। उसने जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेना आरंभ कर दिया। बहुत से सिक्के पर उसका नाम आने लगा और बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम लिखा जाने लगा। एक प्रकार से साफन फत्ता बेगम नूरजहां के हाथों में चली गई। राज्य संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिना नूरजहां की स्वीकृति के संभव न रह गया। जहांगीर प्राय करता था कि बादशाहत उसने बेगम नूरजहां को दे दी है। नूरजहां के प्रभुत्व काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम 1611 ईस्वी से 1622 ईस्वी तक का समय, जबकि उसके माता पिता जीवित थे, उसकी महत्वाकांक्षा को सीमित रखने में सफल हुए। यह समय ऐसा था जबकि नूरजहाँ और शाहजहाँ एक दूसरे के साथ थे। दूसरा समय 1622 से 1627 ईस्वी तक। 1921 में नूरजहाँ की माँ असमत बेगम की मृत्यु हो गई और 1622 ईस्वी में उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने का और अपने माता पिता इस समय में न रहे, जबकि जहांगीर ने अपना स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण नूरजहाँ को शासन में अधिक स्वतंत्रता दे दी। यह समय ऐसा रहा जबकि नूरजहाँ और शाहजहाँ एक दूसरे के विरोध में हो गए। अपने विवाह के कुछ वर्षों में ही नूरजहाँ ने अपना एक दल बना लिया था जिसे नूरजहाँ गुट के नाम से पुकारा गया। इस गुट में नूरजहाँ, उसका पिता एतमादुद्दौला, उसकी माँ असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शाहजादा खुर्रम थे। इनमें से प्रत्येक योग्य था और प्रत्येक राज्य में प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए हुए थे। शाहजादा खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहाँ की पदवी से विभूषित किया गया, राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाता है था, और आसफ खां की लड़की अर्जुमंद बानू बेगम से उसका विवाह हुआ था। 1612 ईस्वी में एतमादुद्दौला ने 1619 ईस्वी तक ही 7000 जात और 7000 सवार का पद प्राप्त कर लिया था। आसफ खां ने 1622 ईस्वी तक 6000 सवार और 6000 जात का पद प्राप्त कर लिया था। शाहजहां खुर्रम को बादशाह के दाहिनी ओर बैठने का स्थान, शाहजहां की उपाधि तथा 30000 जात और 20000 सवार का पद दिया गया था। यह समय इस गुट का और नूरजहां की प्रभुसत्ता का था। इस दल के विरोधी वे पुराने सरदार थे जो शासन में नूरजहां बेगम के बढ़ते हुए प्रभाव को पसंद नहीं करते थे, परंतु वे दुर्बल स्थिति में थे और जहांगीर उनकी सलाह सुनने के लिए तैयार न था। इस प्रकार 1622 ईस्वी तक नूरजहां ने इफ दल की सहायता से अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित किया। प्रोफेसर एम नूरुल हसन ने इस संबंध में एक अन्य विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जहांगीर के शासन के प्रारंभिक काल से ही दरबार में अमीरों के विभिन्न गुट थे जो आपस में शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रकार ये गुट जहांगीर और नूरजहां के विवाह के पहले ही थे। नूरजहां ने इस गुटबंदी में प्रारंभिक वर्षों में कोई भाग नहीं लिया। उनके अनुसार 1611 ईस्वी में से 1620 ईस्वी के मध्य नूरजहां गुट जैसा गुट कोई नहीं था। वस्तुतः नूरजहां का राजनीति में हस्तक्षेप जहांगीर के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु के पश्चात आरंभ हुआ। 1921 ईस्वी में नूरजहां ने शेर अफगान से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहजादा शहरयार से कर दी और उसे 8000 जात और 4000 सवार का पद दिया गया। उस समय से उसकी इच्छा में परिवर्तन हो गया। उसने शाहजहां की शक्ति को समाप्त करने का निश्चय किया। जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और बहुत लंबे समय तक उसने जीवन की आशा नहीं की जा सकती। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां की बादशाह बन जाने से नूरजहां शासन सत्ता का उपभोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि शाहजहां जैसा योग्य और अहमवादी व्यक्ति सत्ता में साझेदारी करने के तैयार नहीं हो सकता था। इसके विपरीत शहजादा शहरयार अल्पायु और दुर्बल चरित्र का था। यदि शहरयार बादशाह बन सकता तो सत्ता नूरजहां के हाथों में रह सकती थी। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है, अल्पायु 16 वर्ष, आज्ञाकारी स्वभाव, दुर्बल मस्तिष्क और दुर्बल चरित्र का शहरयार एक सत्ता प्रिय महिला के लिए उपयुक्त स्थान था। इस कारण शाहजहां की विद्रोह 3 वर्ष तक रहा। उसने जहांगीर के अंतिम दिनों को कष्टप्रद बनाया और साम्राज्य की शक्ति को दुर्बल किया। 1626 ईस्वी में महावत खान ने विद्रोह किया और उसने बादशाह जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से बंदी बनाकर नूरजहां के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया। महावत खान सिंहासन के प्रति वफादार था और एक योग्य सेनापति था, परंतु वह उन व्यक्तियों में से था जहां जहांगीर के प्रति नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से अप्रसन्न थे। नूरजहां इस बात को जानती थी। इस कारण जिस महावत खां ने अपनी योग्यता से नूरजहां से पहले के समय में निरंतर पदोन्नति पाई थी, नूरजहां के समय में कोई पद वृद्धि न पा सका, बल्कि उसे अफगानिस्तान की सीमाओं पर नियुक्त कर दिया गया था। परंतु महावत खां अपने समय का योग्यतम सेनापति था। शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए शाहजादा परवेज के समय इसे नियत किया गया। महावत खां के द्वारा ही शाहजहां का विद्रोह दबाया जा सका। इससे उसके सम्मान में वृद्धि हुई और वह शाहजादा परवेज के समर्थक भी बन गया। नूरजहां इन दोनों बातों को बर्दाश्त न कर सकी। उसे महावत खां की शक्ति को तोड़ने और उसे अपमानित करने का निश्चय किया, जिसके कारण महावत खां को जहांगीर को बंदी बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में कैद कर लिया। यह विद्रोह नूरजहां की योग्यता के कारण असफल हो गया। प्रायः एक माह के पश्चात ही महावत खां को भागना पड़ा। अंत में उसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली, परंतु उससे बादशाह जहांगीर को दुख और अपमान सहना पड़ा तथा उसे राज्य के एक वफादार एवं योग्य सेनापति को खो दिया। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का कहना है कि इस संपूर्ण घटना के मुख्य हाथ आसफ खां का था, जो महावत खां और परवेज की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, जिससे उसके दामाद कोष्टक में शाहजहां के गद्दी पर बैठने में कोई बाधा न आए। नूरजहां अपने भाई की इस कूटनीति को समझ न सकी और महावत खां को खोट बैठी। महावत खां अपनी रुच्छा के लिए थट्टा की ओर भाग गया। 28 अक्टूबर 1626 ईस्वी को परवेज की मृत्यु के बाद एक तरह से महावत खां कमजोर हो गया और वह शाहजहां की सेवा में चला गया। यह माना जा सकता है कि महावत खां के पतन से आसफ खां को हाथ रहा हो, परंतु यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि स्वयं नूरजहां भी महावत खां की शक्ति को समाप्त करना चाहती थी। इस प्रकार राजनीति में नूरजहां के हस्तक्षेप ने जहांगीर के अंतिम दिनों में दो विद्रोहियों का जन्म दिया, जिन्होंने साम्राज्य में शक्ति और सम्मान कम किया। यदि नूरजहां शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के उद्देश्य से शहरयार को राज सिंहासन दिलाने के लिए ललायत न होती तो संभवतया शाहजहां नूरजहां के लिए सन्नद्ध न होता और महावत खां के विद्रोह का प्रश्न ही न उठता। इस प्रकार नूरजहां का राजनीति में हस्तक्षेप हानिकारक हुआ। डॉक्टर एस आर शर्मा, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव और डॉक्टर सक्सेना का यही मत है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी शाहजहां और महावत खां के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए नूरजहां को इस दोष में पूर्णतया मुक्त करते हैं। 6. शाहजहां और महावत खां के विद्रोह। पहला, शाहजहां का विद्रोह 1623 से 1626 ईस्वी। जब से नूरजहां ने अपनी पुत्री शेर अफगन से उत्पन्न लाड़ली बेगम की शादी शहरयार से की, तब से शाहजहां के प्रति उसके व्यवहार में अंतर आ गया। उसने जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां के स्थान पर शहरयार को गद्दी पर बैठाने की लालसा की। इस कारण उसने शाहजहां की प्रतिष्ठा और शक्ति कम करने की योजना बनाई। 1621 ईस्वी में उसकी मां असमत बेगम, जिसने गुलाब के से इत्र निकालने की विधि को खोजा था, की मृत्यु हो गई और 1622 ईस्वी के आरंभ में उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई। एतमादुद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसके शासन संबंधी अधिकार नूरजहां को दे दिए गए। इससे नूरजहां की शक्ति और सम्मान में वृद्धि हुई, परंतु उसको समझाने वाला कोई न रहा। शाहजहां स्वयं भी नूरजहां बेगम की बढ़ती हुई शक्ति से संकित हो गया। जहांगीर का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। ऐसी स्थिति में इन दोनों महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1621 ईस्वी के अंतिम दिनों में पर्सिया ने कंधार पर आक्रमण किया और 1622 ईस्वी के आरंभ में किले का घेरा डाल दिया। जहांगीर ने शाहजहां को कंधार की रक्षा के लिए कूच के आदेश दिए। शाहजहां ने जो नूरजहां की ओर संकित था, इस बात की मांग की कि संपूर्ण पंजाब और रोहतासगढ़ का दुर्ग उसे दे दिया जाए, तभी वर्षों के पश्चात वह कंधार जाएगा। नूरजहां ने शाहजहां के टालमटोल का लाभ उठाया और शाहजहां को उसके विरुद्ध भड़काया। परंतु डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का यह मत भी ठीक है कि यदि शाहजहां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो वास्तव में उसे संपूर्ण गुजरात, राजस्थान का अधिकांश भाग, मालवा, दक्षिण भारत और पंजाब की सत्ता प्राप्त हो जा सकती थी। बाद में काबुल पर आधिपत्य भी मांगता। ऐसी स्थिति में मुगल बादशाह के पास दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बंगाल और बिहार के अतिरिक्त कुछ न बचता। शाहजहाँ की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया और उसे अपनी सेना के साथ कंधार जाने के आदेश दे दिए गए। इसी समय शाहजहाँ ने अपने सैनिकों को धौलपुर की जागीर पर अधिकार करने के लिए भेजा। शाहजहाँ ने इस जागीर को जहांगीर से मांगा था और उसे आशा थी कि वह उसे प्राप्त हो जाएगी, परंतु नूरजहाँ ने उससे पहले की उस जागीर का शहरयार के नाम करा दिया। इस कारण जब शाहजहाँ के सैनिक धौलपुर पहुँचे तो शहरयार के फौजदार ने उनका झगड़ा हो गया। इससे भी जहांगीर असंतुष्ट हुआ और उसने शाहजहाँ को अपनी संपूर्ण सेना सहित दरबार में उपस्थित होने के आदेश दिए। शाहजहाँ ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं, उसने अपने राजदूत जहिद बेग को पर्सिया के शाह के पास नजरानियाँ लेकर भेजा और दक्षिण तथा गोंडवाना के राज्यों से रफद एकत्रित करनी आरंभ कर दी। जहांगीर ने शहरयार को 12,000 जात और 8,000 सवार का पद दिया और उसे कंधार की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार शाहजहाँ के क्षमा मांगने के बाद भी पंजाब की जागीर, जिसमें हिसार भी था, शहरयार को सौंप दी गई, जबकि डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार शाहजहाँ के पत्रों की भाषा उदंडता और नूरजहाँ के प्रति घृणा से पूर्ण थी। जिस प्रकार भी हो, यह निश्चित है कि शाहजहाँ ने बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं किया और विद्रोह के लिए तत्पर हो गया। शाहजहाँ के व्यवहार से संकित होकर नूरजहाँ ने महावत खां को काबुल से बुला लिया और उसे 6,000 जात और 5,000 सवार का पद दिया। आसफ खां को आगरा से शाही खजाने को लाने के लिए भेजा गया। कंधार के लिए समय से फायदा न पहुंच सकी और 1622 ईस्वी में पर्सिया ने कंधार पर अधिकार कर लिया। उसी समय शाहजहाँ ने खुला विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने शाहजहाँ परवेज को बिहार से बुलवाया, सभी स्वामी भक्त सरदारों को एकत्रित होने के आदेश दिए और महावत खां और शाहजादा परवेज की विद्रोह को दबाने हेतु नियुक्त किया गया। स्वयं जहांगीर और नूरजहाँ भी 1622 ईस्वी में अजमेर पहुंच गए। शाहजहाँ ने मांडू से आगे बढ़कर अचानक आगरा पर आक्रमण किया, परंतु बिल्लोचपुर के निकट उसकी पराजय हुई और उसे मांडू वापस लौटना पड़ा। शाहजादा परवेज और महावत खां ने उसका पीछा किया। शाहजहाँ अलीगढ़ चला गया और संपूर्ण गुजरात उसके हाथों से निकल गया। शाहजहाँ असीरगढ़ से बुरहानपुर गया और उसने अहमदनगर के मालिक मलिक अंबर और बीजापुर के सुल्तान से सहायता की याचना की, परंतु उसे सहायता न मिली। महावत खां ने बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। शाहजहाँ की स्थिति बहुत खराब थी और उसके साथी उसका साथ छोड़ रहे थे। शाहजहाँ बीजापुर, तेलंगाना आदि स्थानों पर होता हुआ उड़ीसा पहुंचा। उड़ीसा पर उसकी सरलता से अधिकार हो गया और बंगाल को उसने युद्ध करके जीत लिया। उसके पश्चात शाहजहाँ ने बिहार की ओर कदम बढ़ाए। संपूर्ण बिहार, रोहतासगढ़ का दुर्ग, जौनपुर, पटना आदि उसके अधिकार में चले गए। शाहजहाँ जब इलाहाबाद का घेरा डाले हुआ था, उसी बुरहानपुर को सुरक्षित करके महावत खां इलाहाबाद के निकट पहुंचा और शाहजहाँ को युद्ध के लिए बाध्य किया। शाहजहाँ की पराजय हुई और उसे भागना पड़ा। एक बार फिर शाहजहाँ बिहार, बंगाल, तेलंगाना और बीजापुर होते हुए अहमदनगर पहुंचा, परंतु महावत खां उसका पीछा कर रहा था। उस अवसर पर बीजापुर और अहमदनगर में युद्ध चल रहा था तथा मुगल बीजापुर की सहायता कर रहे थे। इस कारण मलिक अंबर ने शाहजहाँ को सहायता दी। शाहजहाँ ने बुरहानपुर का घेरा डाला, परंतु महावत खां के पहुँच जाने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा और उसने बालाघाट में रोहनगढ़ के किले में जाकर शरण ली। उसी समय शाहजहाँ बीमार पड़ गया। उसका मुख्य सहायक अब्दुल्ला खां उसे छोड़कर सन्यासी हो गया। ऐसी परिस्थिति में शाहजहाँ ने बादशाह से क्षमा मांगी और उसे रोहतासगढ़ और असीरगढ़ के किले व बादशाह को देने पड़े तथा अपने पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब को दरबार में भेजना पड़ा। इन शर्तों पर जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया और बालाघाट की सूबेदारी उसे दे दी। इस प्रकार 3 वर्ष के संघर्ष के पश्चात शाहजहाँ का विद्रोह समाप्त हुआ। शाहजहाँ की असफलता के कारण उसकी गलत अपेक्षाएं थीं। उसने सोचा था जहांगीर अपनी बीमारी के कारण स्वयं नेतृत्व न कर सकेगा। उसका ससुर आसफ खां, जो राज्य का दीवान था, उसकी सहायता करेगा। बेगम नूर जहाँ से असंतुष्ट सरदार उसका साथ देंगे, उसके सेनापतित्व की ख्याति के कारण अन्य विभिन्न सरदार भी उसके साथ हो जाएंगे। स्वयं उसकी सेना बहुत बड़ी थी, जबकि बादशाह से इतनी बड़ी सेना एकत्रित करने की आशा न थी। पर्शिया के कंधार को जीतने में साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमाएं आरक्षित हो गई थी, जिससे बादशाह को वहां से सेनाएं हटाने का अवसर न मिल सकेगा और इन परिस्थितियों में उसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहांगीर ने बीमारी के बावजूद भी उत्साह दिखाया। महावत खां जैसा योग्य सेनापति, अन्य विभिन्न सरदार तुरंत बादशाह की सेवा में पहुंच गए। आसफ खां ने उस समय शाहजहां की सहायता देना ठीक न समझा। दक्षिण भारत में शाहजहां कोई विशेष सहायता न मिली और पर्शिया ने कंधार को जीतकर आगे कदम नहीं उठाया। इस कारण शाहजहां की असफलता मिली और उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना पड़ा। 2. महावत खां का विद्रोह। मार्च 1626 ईस्वी। महावत खां राजभक्त था, यद्यपि वह उन सरदारों में से था जो शासन में नूरजहां के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। परंतु शाहजहां के विद्रोह के बावजूद अवसर पर वह प्रसन्नता से जहांगीर के साथ हो गया। शाहजहां के विद्रोह को समाप्त करने का मुख्य श्रेय महावत खां को था। इससे महावत खां के सम्मान और शक्ति में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त उस समय में उसने शाहजादा परवेज के साथ रहकर कार्य किया। इस कारण वह परवेज के बहुत निकट हो गया। नूरजहां को यह पसंद न था। वह जानती थी महावत खां राजभक्त है, परंतु उसकी सत्ता को पसंद नहीं करता। वह यह भी नहीं चाहती थी कि महावत खां जैसा योग्य सरदार परवेज का सहायक बन जाए। ऐसी स्थिति में परवेज उसके दामाद शहरयार का मुख्य प्रतिद्वंदी बन सकता था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार नूरजहां ने महावत खां की शक्ति को तोड़ने का निश्चय किया। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी डॉक्टर के अनुसार महावत खां का मुख्य शत्रु नूरजहां का भाई आसफ खां था, जो अपने दामाद कोष्टक में शाहजहां के पक्ष को दृढ़ करने के लिए महावत खां का विनाश चाहता था। नूरजहां अपने भाई की कूटनीति को समझ न सकी और इस कार्य में वह आसफ खां के सहायक बन गई। जैसा भी हो, परंतु यह स्पष्ट है कि महावत खां की शक्ति को तोड़ने के प्रयत्न में शहीद दरबार द्वारा किए गए। महावत खां को बंगाल जाने के आदेश दिए गए। शाहजादा परवेज को बुरहानपुर भेजा गया, जहां खानजहां को परवेज के साथ भेजा गया। यह सभी कुछ परवेज और महावत खां को एक दूसरे से पृथक करने के उद्देश्य से किया गया। महावत खां और परवेज दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात महावत खां को आदेश दिया गया कि वह बंगाल और बिहार के युद्ध के अवसर पर पकड़े हुए हाथियों को दरबार में भेजे और युद्ध के अवसर पर प्राप्त किए गए धन का हिसाब दे। महावत खां ने हाथी तो भेज दिए, परंतु उसने यह समझ लिया कि यह उसके विनाश का प्रयत्न है। इस कारण वह स्वयं बादशाह से मिलने चल दिया। उस समय जहांगीर काबुल जा रहा था और पंजाब में बेहद नदी के तट पर था। उसी समय जहांगीर ने महावत खां के दामाद बरखुरदार को अपमानित किया और उसकी संपत्ति छीन ली। उसका कारण यह बताया गया कि महावत खां ने बिना शाही आज्ञा के अपने पुत्री की शादी उससे की थी। जिस समय महावत खां को अपने राजपूत सैनिकों को लेकर शाही शिविर के निकट पहुंचा, उस समय बादशाह की अधिकांश सेना आसफ खां और नूरजहां स्वयं नदी पार कर चुके थे, परंतु जहांगीर शिविर में था। महावत खां ने बादशाह के सामने पहुंचकर उससे न्याय की मांग की और अपने साथ चलने के लिए कहा। जहांगीर को उसकी बात माननी पड़ी और इस प्रकार वह एक प्रकार से महावत खां का बंदी हो गया। यद्यपि महावत खां का कहना था कि बादशाह को उसके संबंधियों के कुप्रभाव से बचाने के लिए उसने यह कार्य किया था। तब नूरजहां को इस बात की सूचना मिली कि महावत खां ने जहांगीर को कैद कर लिया है, तो उसने आसफ खां को इसके लिए दोषी ठहराया। सर्वसम्मत से निश्चित किया गया कि नदी पार करके महावत खां पर आक्रमण किया जाए। जहांगीर ने नूरजहां को समाचार भेजा कि उसे कोई कार्य ऐसा न करे जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का लगे, परंतु तब भी नूरजहां ने अपनी सेना को नदी पार करने के आदेश दिए और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। नूरजहां की सेना का कुछ भाग ही नदी पार कर सका था, उसे भी राजपूतों ने मार दिया। बेगम की दासी को तीर लगा तथा उसकी हाथी पर हमला किया गया, जिसके कारण वह भाग खड़ा हुआ। आसफ खान ने भागकर अटक के किले में शरण ली, परंतु नूरजहां ने आत्मसमर्पण कर दिया और जहांगीर के साथ रहने के लिए आ गई। महावत खान ने अटक को घेर कर आसफ खां को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। इस प्रकार बादशाह बेगम और आसफ खां आदि सभी महावत खां के हाथ में आ गए। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। महावत खां का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि, और वह भी जोश में परिस्थितियों बस कर गया था, आगे उसकी कोई योजना न थी। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शाही परिवार काबुल की तरफ चल दिया। साम्राज्य में यथावत शांति रही, परंतु महावत खां सैनिक था, कूटनीतिज्ञ था, जबकि नूरजहां ने आरंभ से ही अपना जाल फैलाना आरंभ कर दिया था। इस कारण महावत का बहुत थोड़े समय इस स्थिति का उपयोग कर सका था। काबुल में घोड़ों को घास चराने के स्थल पर राजपूतों और बादशाह के आधी सैनिकों में झगड़ा हो गया और एक बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए। महावत खां ने विद्रोह को तो दबा दिया, परंतु उसकी शक्ति दुर्बल हुई और उसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई। काबुल को वापस आते ही रोहतासगढ़ के निकट महावत खां को बताया गया कि जहांगीर स्वयं अपनी सेना का निरीक्षण करेगा और उस अवसर पर महावत खां अपनी सेना को दूर रखें। उस समय तक नूरजहां ने बादशाह के सैनिकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। सेना का निरीक्षण करने के बहाने जहांगीर ने सेना का स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया। महावत खां, जिसने बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सेना को दूर रखा था, नूरजहां की इस चालाकी को समझ न सका। सेना का स्वामित्व ग्रहण करते ही जहांगीर ने महावत खां को शाही शिविर छोड़ देने के आदेश दिए। उस समय बादशाह की सेना का मुकाबला करना शाही विद्रोह था, जिसके लिए महावत खां न तो तैयार था और न ही उसके पास शक्ति रह गई थी। महावत खां थट्टा की ओर भाग खड़ा हुआ। वह अपनी जीवन रक्षा के हेतु आसफ खां और दानियाल के पुत्रों को अपने साथ लेता गया। जैसा ही उसने अपने जीवन की सुरक्षित समझा, उसने उन सभी को छोड़ दिया। उस समय शाहजहां बादशाह की कठिनाइयों से लाभ उठाने के लिए थट्टा की तरफ आया, किंतु उसे सफलता न मिली और बीमारी के कारण वह मृत्यु पुनः दक्षिण वापस चला गया। वापस जाते हुए गुजरात में शाहजादा परवेज की मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1626 ईस्वी और महावत खां के पतन की सूचना उसे मिल गई थी। जहांगीर ने शाहजहां को दबाने के लिए महावत खां को नियुक्त किया था, परंतु महावत खां बादशाह का साथ देने के स्थान पर शाहजहां के साथ चला गया, जिसने उसका स्वागत किया। इस प्रकार महावत खां का अल्पकालीन प्रभुत्व समाप्त हुआ। देखा जाए तो महावत खां ने इस कार्य क्षणिक उत्साह में किया था। उसकी पहले से निश्चित की गई कोई योजना न थी। बादशाह और बेगम को कैद करने के पश्चात भी वह उनका सम्मान करता रहा था और वह कभी बादशाह जहांगीर को समाप्त करने या उसे भारत से बाहर निकालकर स्वयं अथवा किसी अन्य को गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार न था। ऐसी स्थिति में वह कूटनीति के द्वारा ही बादशाह पर प्रभाव रख सकता था और वह योग्यता उसमें न थी। उसकी तुलना में नूरजहां अधिक चालाक थी और अपनी चालाकी से जहांगीर को मुक्त करा लिया। 7. जहांगीर की मृत्यु। 1620 ईस्वी में जहांगीर का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। निरंतर कश्मीर की यात्राएं और वहां की अच्छी जलवायु भी उसके स्वास्थ्य को ठीक न कर सकी थी। मार्च 1627 ईस्वी में जहांगीर कश्मीर गया। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। कश्मीर की जलवायु से भी उसके स्वास्थ्य में सुधार न हुआ और वह लाहौर वापस चल दिया। मार्ग में 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर के निकट एक बाग में उसे दफना दिया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक सुंदर स्मारक बनवाया। जहांगीर का चरित्र, व्यक्तित्व और इतिहास में स्थान। जहांगीर के चरित्र के विषय में इतिहासकारों में विवाद है। यूरोपियन इतिहासकारों ने प्राय उसे एक विलासी और असफल शासक कहा, जबकि अनेक भारतीय इतिहासकारों ने उसे एक न्यायप्रिय, प्रजापालक शासक बताया है। डॉक्टर स्मिथ ने जहांगीर के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है, वह कोमलता और निष्ठुरता, न्याय और बुद्धि की चंचलता, सुसभ्यता, पशुता, बुद्धिमत्ता और बचपने के अजीब मिश्रण था। सर हेरनी इलियट ने लिखा है, उसके बनाए हुए कानून न नवीन थे और न व्यवहार में लाए गए थे। लेन पुल ने उसके प्रारंभिक दोषों को बताते हुए बाद में उसे अन्य उन दोषों से पर्याप्त मात्रा से मुक्त बताया है, और एलिम्पशन ने भी उदारतापूर्वक बादशाहत की दृष्टि से उसके द्वारा अपने प्रारंभिक काल में बनाए गए कानूनों की प्रशंसा की है। इससे स्पष्ट होता है कि यूरोपियन इतिहासकारों ने मुख्यतया उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं की ओर दृष्टिपात किया, परंतु प्रश्न यह है कि क्या उसके व्यक्तिगत चरित्र के दोषों का प्रभाव शासन पर पड़ा था। इस दृष्टिकोण से देखने पर ही हम जहांगीर की उचित मूल्यांकन कर सकते हैं। जहांगीर एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा संबंधी और अच्छा मित्र था। वह सभी का आदर करता था और सभी से प्रेम था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु वह विद्रोह उसकी महत्वाकांक्षा और सिंहासन को तुरंत प्राप्त करने की लालसा की अपेक्षा अपने लिए व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र व्यवहार करने की इच्छा से था। इसके अतिरिक्त जहांगीर के चरित्र की यह दुर्बलता थी कि वह अपने निकट के आत्मीय जनों से प्रभावित हो जाता था। इस विद्रोह के लिए भी उसने सहयोगियों का कुप्रभाव अधिक उत्तरदायी था। इसी प्रकार बाद में नूरजहां को शासन सत्ता सौंप देने से भी चरित्र का यह दुर्बलता ही प्रमुखता थी, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि अपने पिता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह नहीं किया, बाद में उसे समझौता कर लिया और पिता के द्वारा की गई भर्त्सना को भी उसने सहर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार नूरजहां के प्रभाव से उसने शासन के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया और न अयोग्य अधिकारियों या स्त्रियों के प्रभाव को शासन में आने दिया। नूरजहां से उसका प्रेम व्यक्तिगत था और सिर्फ नूरजहां ही उसके प्रेम और सत्ता की अधिकारिणी थी। बाद में अपने पिता के बारे में जहांगीर ने सर्वदा सम्मान प्रदर्शित किया और उसके मकबरे तक पैदल जाया करता था। इसी प्रकार जहांगीर ने अभी सभी पत्नियों का सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। अपनी पत्नी मानबाई की मृत्यु पर उसने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अपने पुत्र खुसरो को विद्रोह करने के बावजूद भी पहली बार माफ कर दिया, दूसरी बार खड्यंत्र करने पर उसे अंधा कर दिया। उसके पश्चात उसने उसके नेत्रों का इलाज भी करवाया। उससे बाध्य होकर ही शाहजहां को खुसरो को सौंप दिया था और अपनी मृत्यु पर उसे दुख हुआ था। अपने अन्य पुत्रों परवेज, खुर्रम और सहरयार के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार था और समय समय पर उनके कार्यों के अनुसार उसने उन्हें पद और सम्मान प्रदान किए। अपने मित्रों और वफादार व्यक्तियों को भी उसने राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए थे। व्यक्तिगत दृष्टि से जहांगीर का एक दोष अत्यधिक शराब पीना था। स्त्रियों से संबंध तत्कालीन शासकों की भात ही थी, बल्कि देखा जाए तो उसमें अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम का भावना उनसे कहीं अधिक थी। ऐसी स्थिति में जहांगीर को बिलासप्रिय कह देना उसके साथ अन्याय करना होगा। यह पृथक बात है कि वह आराम पसंद था और अन्य मुगल शासकों के भांति युद्ध स्थल पर जाना और सेना पतित्व करना उसकी सामर्थ्य के बाहर की बात थी। जहांगीर सुशिक्षित एवं सुसभ्य था। फारसी और तुर्की पर उसका आधिपत्य था। अरबी, हिंदी, अन्य भाषाओं को भी वह जानता था। उसकी जीवन गाथा तुझके जहांगीरी आरंभ के 7 वर्षों में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई है और उसके पश्चात उसने अन्य व्यक्तियों से स्वयं लिखवाई थी। यद्यपि उसे तुझके बाबरी के समकक्ष स्थान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु उससे जहांगीर का फारसी भाषा का ज्ञान, उसकी लेखन शैली और विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान का पता अवश्य चलता है। जहांगीर ने विभिन्न पक्षियों, पशुओं और वनस्पति, मुख्यतः कश्मीर का वर्णन किया है। वह सुंदर और ज्ञानवर्धक है। प्राकृतिक सौंदर्य का उसका वर्णन अद्वितीय है। उसके अतिरिक्त जहांगीर विद्वानों, कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता था। वह प्रत्येक शुक्रवार की शाम साहित्यकारों एवं विद्वानों के साथ व्यतीत करता था। उसके समय के विद्वानों में नियामतुल्ला, नजीब खां, अब्दुल्ला हक देहलवी आदि प्रमुख थे। उसके समय में अनेक व्यक्तियों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति की। जहांगीर ने सबसे अधिक रुचि चित्रकला में ली। उसके समय में श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंच गई। स्वयं जहांगीर को उसका बहुत अच्छा ज्ञान था और उसका दावा था कि यदि उसके सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत किया है तो वह बता देगा कि उसे किस कलाकार ने बनाया है, और यदि एक चित्र को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया है तो वह बता देगा कि उस चित्र का कौन सा अंग किस कलाकार ने बनाया है। स्थापत्य कला का भी जहांगीर को शौक था। आगरा के निकट सिकंदरा में उसका पिता का मकबरा उसकी देखरेख में ही बनवाया गया था। जो अकबर के उदार एवं अस्पष्ट चरित्र का प्रतीक है, उसके समय में बनवाई गई लाहौर की मस्जिद की तुलना शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद से की जा सकती है, और नूरजहाँ द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा पच्चीकारी और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के द्वारा अद्वितीय है। जहांगीर ने अनेक स्थानों मुख्यतया लाहौर और कश्मीर में सुंदर बाग लगवाए। उसने अपने समय में सिक्कों को कलात्मक शक्ल प्रदान की। उसे अच्छी वेशभूषा का शौक था और उसमें सुधार की। जहांगीर ने शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। वह घुड़सवारी और शस्त्र चलाने में कुशल था, परंतु जहांगीर ने एक कट्टर सैनिक की भांति कष्ट उठाने की क्षमता नहीं थी। इस प्रकार वह एक अच्छा सेनापति भी न था। अपने पिता के समय में उसने किसी भी युद्ध अभियान में रुचि नहीं ली। उसके शासनकाल की विजय का श्रेय उसके पुत्र शाहजहां और अन्य योग्य सरदारों को था। जहांगीर ने सेना की सुव्यवस्था और रण कुशलता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न किया हो, ऐसा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। धार्मिक नीति की दृष्टि से जहांगीर का स्थान अपने पिता अकबर और अपने पुत्र शाहजहां के मध्य में आता है। जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था और साधारणतया अपने धर्म की मुख्य बातों का पालन करता था, परंतु धर्म में उसे विशेष रुचि न थी। वह इस्लाम के सिद्धांतों की बहुत कट्टरता से पालन नहीं करता था। वह सभी धर्मों के मानने वाले में विश्वास रखता था, जिससे उसका दृष्टिकोण उदार बन गया था। ईश्वर एक है, इसमें उसका विश्वास था। इस कारण जहांगीर अपने व्यक्तिगत व्यवहार और नीति की दृष्टि से धार्मिक मामलों में उदार रहा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों को मानने वाले उसकी राज्य में ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थी। शासन में राज्य की ओर से धर्म के प्रति वही दृष्टिकोण रखा गया था जो अकबर के समय में था। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि वे सहूलियत महसूस कर सके, उन्हें किसी मुसलमान का मोहताज न होना पड़े। हिंदुओं को राज्य में सम्मानित पद दिए गए थे और उन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया था। जहांगीर ईसाइयों के घनिष्ठ संपर्क में आया था। उसने अपने पत्रों की शिक्षा प्रबंध उनकी देखरेख में किया था, परंतु जहांगीर के समय में कुछ घटनाएं अवश्य ऐसी हुई थी जिससे स्पष्ट होती है कि कभी कभी जहांगीर ने इस्लाम धर्म का पक्ष लिया। राजौरी के हिंदुओं को उसने इसलिए दंड की दिया था क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उसे हिंदू बना लिया करते थे। कंगड़ा के किले को जीतकर वहां उसने एक गाय को काटकर जश्न मनाया था। अजमेर में वाराह के मंदिर की मूर्तियों को उसने तालाब में फेंकवा दिया था। पुर्तगालियों से युद्ध के अवसर पर राज्य के सभी गिरजे बंद कर दिए गए थे। इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव को दंड देने का कारण भी यही था। उसके विचारों से चिढ़ थी। एक बार उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने के आदेश दे दिए थे, परंतु ये सभी घटनाएं एक विशेष अवसर अथवा स्थिति के कारण थी। गुरु अर्जुन का दंड देने का कारण राजनीतिक भी था। जहांगीर ने सिख संप्रदाय के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इसी कारण प्रकार जैनियों से असंतुष्ट होने के कारण भी आंशिक रूप से राजनीतिक था। इसके अतिरिक्त जब हम यह देखते हैं कि असंतुष्ट होने पर भी उसने शेख रहीम, काजी नूरुल्ला और शेख अहमद सरहिंदी जैसे मुस्लिम धर्म प्रचारकों को भी दंड दिया था, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका हिंदू, जैन, सिख अथवा ईसाइयों के साथ कठोरता करने का राजनीतिक होने के साथ साथ परिस्थितियों बस था, न कि धार्मिक कट्टरता। उसने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई। साधारणतया जहांगीर सभी धर्मों के प्रति उदार रहा और सभी से उसका संपर्क रहा। मुख्यतया हिंदुओं से उसके घनिष्ठ संबंध थे और वह उन सबके त्योहारों और उत्सवों में भाग लेता था। उसने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना, मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। इस प्रकार अपने पिता के समान न होते हुए भी जहांगीर धार्मिक दृष्टि से उदार रहा और उसने अपने पिता के समय की अधिकांश परंपराओं का पूर्ववत स्थापित किया। परंतु उसके समय में अकबर की नीति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आ गया। जहांगीर एक सफल और प्रजापालक शासक माना गया। उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अकबर के समय में स्थापित की गई शासन व्यवस्था को यथावत रखा। अकबर द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः सफल रही। जहांगीर को उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त समय और परिस्थितियों को समझने की क्षमता जहांगीर में थी। 22 वर्ष का उसका शासनकाल असफल नहीं माना जा सकता। उसके समय में बादशाह और साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रही। एक शासक की दृष्टि से वह हमेशा उन्नति की ओर प्रयत्नशील रहता था। उसके समय में किसान संपन्न थे, उन पर कोई अतिरिक्त कर भार न था और यदि उनकी हानि होती थी तो राज्य उसकी पूर्ति कर देता था। जहांगीर के समय में जुआ, शराब पीना आदि को बंद करने के प्रयत्न किए गए थे, परंतु उसका सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता था। मध्य युग में न्याय बादशाह का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माना जाता था। जहांगीर ने उसकी ओर पूरा ध्यान दिया था। मृत्युदंड सिर्फ बादशाह ही देता था और उस पर भी यह आदेश थे कि शाम होने से पहले उस दंड को कार्य रूप में परिणत न किया जाए। बादशाह जहांगीर न्यायप्रिय था और उसने अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। इस प्रकार जहांगीर को एक अच्छा शासक माना गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में लिखा है, मुगल इतिहास में जहांगीर का व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व है। साधारण दृष्टि से आंका गया है कि विचार यह है कि विलासप्रिय और हृदयहीन अत्याचारी था, न्यायपूर्ण नहीं है। सभी विवरण इससे सहमत हैं कि वह बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और राज्य की जटिलतम कठिनाइयों को सरलता से समझने वाला था। उसके चरित्र में बहुत कुछ निंदा करने के योग्य है, परंतु उसमें बहुत कुछ अधिक ऐसा कुछ है जो उसे भारतीय इतिहास के रोचक व्यक्तियों में स्थान प्रदान कराता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने जहांगीर के प्रति और भी अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया। वह लिखते हैं, सर्वाधिक रूप से जहांगीर का शासन साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि का रहा। उसके संरचना में उद्योग और व्यापार की उन्नति हुई। स्थापत्य कला ने महत्वपूर्ण सफलता पाई। चित्रकला अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच गई। साहित्य की इतनी प्रगति हुई जितने पहले कभी नहीं हुई थी और तुलसीदास ने रामायण की रचना की जो उत्तर भारत के लाखों व्यक्तियों के लिए होमर, शेक्सपियर और मिल्टन की रचनाओं के समान है। फारसी और प्रादेशिक भाषाओं में अनेक कवियों की रचनाओं ने मिलकर इस युग को मध्ययुगीन भारतीय साहित्य का अगस्टन युग बना दिया। जहांगीर के समय का राजनीतिक इतिहास रोचक है, परंतु उसका मुख्य आकर्षण उसकी सांस्कृतिक प्रगति है। जहांगीर मुगल बादशाहों में महान न था। उसे हम एक योग्य सेनापति, कुशल राजनीतिज्ञ और मेधावी शासन प्रबंधक स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक सफल और उदार शासक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा, जिसने अपने प्रजा की भलाई का सर्वदा ध्यान रखा। अकबर महान की सफलताओं और शाहजहां की चमक दमक के बीच में घिरकर जहांगीर के व्यक्तित्व और उसके युग को समझने का प्रयत्न करना उचित नहीं होगा। उसने अपने आप में जहांगीर व्यक्तिगत दृष्टि से कुछ मामलों में दुर्बल होते हुए भी सफल रहा था। कंधार की हानि मुख्यतया शाहजहां के विद्रोह के कारण हुई थी। शाहजहां का विद्रोह उस शाहजहादे की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण भी था और महावत खां का विद्रोह शाहजहां के विद्रोह का ही दुष्परिणाम था। बाकी अन्य सभी प्रकार से जहांगीर का समय शांति, प्रगति और समृद्धि का था।